बातां आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
राम राम सा ऊँटारी बाता कार्यक्रम सुनन वाला सगला ऊँट पालक भाई ने भूम जी भाई और
गौरा बेन रा गणान गणा।
राम राम गौरा बेन राम राम भूम जी भाई।
चौपाल में आऊ नी ऊँटारी बाता करण ने, जेने ऊँट पाल करी भीड़ और चौपाल रे माने चारू कानी रूख देख देखो, मन तो एक अखाणो याद आवे की मिनखारी माया रूखारी छाया।
अरे वातो है गौरा बेन, पण मिनख मिनख रो आतरो कोई हीरो कोई कांकरो।
16 आना खरी कही भोमजी भाई, देखो मिनख रो मोल जी को एनी रूप सुनी गुण सुकी जे, और बात मिनखा रे गुणरी करी एनी तो एक जूनो दुओ सुनाओ, क्योंकि भोमजी भाई आजकल मने तो देखो चारू कानी मिनखा चारो थोड़ो कम ही लागे।
अरे गबरा बहन, कई वेला तो अचरज भी हुण लाग जावे कि मिनख रो ओ रूप भी हो सके कहीं, पण हमें ते जूने दुओ सुनाओ। देखो सगड़ा जगह पशुपालक भाई ऊँट पालक भाई रेडियो रे माध्यम से भी कार्यक्रम सुने, और देखो चौपाल में कितनी दूर तक बैठा है ए, आपने दूरी बात ही करी है, देखो नसीलारी है।
करू 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 भोमजी भाई, दुओ हाजिर करू। देखो दुओ है मिनखा में तो मिनख मोकला, मिनखा में तो मिनख मोकला, मिनखा तनो सुगाड़, जा मिनखा में मिनखा चारो वा मिनखा रो काल।
अरे गौरा बहन, थाने दुए माए बात आई मिनखा रे काल री, और इनी बात देखो ऊँटारो भी काल पड़तो जा रही है, और कहने मतलब हो ये गौरा बहन के ऊँटा री संख्या जी के बा घटती जा रही। तो आज अपा पावना सु आई बात करना कि ऊँटा रे संरक्षण सारू समन्वित प्रयास री आवश्यकता, और पावना है डॉक्टर शरदचंद्र मेहता, आप प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में।
तो सगला पहला यहाँ स्वागत करो, राम राम कर ला।
बिल्कुल सा डॉक्टर साहब, आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है, आपने में करा राम राम सा।
राम राम भोम जी भाई, राम राम गौरा बहन।
डॉक्टर साहब, ऊँट तो देखो अपनी संस्कृति है, साहित्य है, जीवन रो महत्व अंग रहो है, और इनरी महत्व मन तो लागे के दूजे पशुधन री तुलना मायने गणी है, पण देखो मैं तो भोम जी भाई कई कहूँ हूँ के दूध और दूनी दोनों रहनी चाहिए।
हाँ।
केवन री बात के ऊँटा री संख्या जी को घट रही है नी, वो घटनी नहीं चाहिए है। तो सगड़ा पहला तो देखो डॉक्टर साहब आई बताओ के आपने कई लागे के आज अपने बात करनी पड़ रही है ऊँटा रे संरक्षण री।
गौरा बहन, ऊँटो की जो संख्या कम हो रही है उसके लिए परिस्थिति बदली है, समय बदला है, वातावरण बदला है, जीवन शैली बदली है, यांत्रिकीकरण हुआ है, ये सारे कारण हुए हैं, उसके कारण जो है इसकी संख्या में कमी आई। कोई एक दिन में रात या दिन जितना अंतर नहीं आ गया, समय प्रगतिशील है, लेकिन आज भी इसकी उपयोगिता बनी हुई है, और उस उपयोगिता के लिए हमें इसकी संरक्षण की भी जरूरत है।
बोम जी भाई, देखो ऊँटारी संख्या घटने में कारण एक को नहीं, घनकरा कारण साथे है, जिको की अबार आपने डॉक्टर साहब बताया।
और अब डॉक्टर साहब आप बात करना, देखो चारू खान जी की बात है, अपने वन्य जीव संरक्षण की बात सुनने में आ रही है डॉक्टर साहब, पर आज आप बात ऊँटारे संरक्षण करी तो दोनों में मोटो अंतर कहे वो मारे ऊँट पाल का, आप बताओ सा।
देखो भोम जी भाई, सबसे बड़ी चीज ये कि भारत सरकार ने जैसे शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है, राजस्थान सरकार ने ऊँट को भी राज्य पशु घोषित कर दिया। अब जो शेर है उसको तो मालूम नहीं है कि वो राष्ट्रीय पशु हो गया, या मोर है उसको मालूम नहीं है कि वो राष्ट्रीय पक्षी हो गया, लेकिन ऊँट जो है उसको तो मालूम नहीं है, ऊँट का मालिक एक व्यक्तिगत आदमी है, और जब व्यक्तिगत आदमी के साथ ये चीज़ जुड़ जाती है तो शेरों के संरक्षण या उनके लिए तो उसके शिकार पे रोक लगा दो, एक जगह फिक्स कर दो, उसको उस जगह में रख दो और उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दो। ऊँट एक ऐसा प्राणी है, इसकी खाने पीने की व्यवस्था व्यक्ति विशेष को करनी होती है, और उस व्यक्ति विशेष ने उसके खाने पीने की व्यवस्था के लिए उसको नहीं पाल रखा, उसने ऊँट को पाल रखा अपने खुद के खाने पीने की व्यवस्था के लिए। इसलिए इन दोनों के संरक्षण में और संरक्षण के तरीकों में रात और दिन का फर्क है, और जो ऊँट पालक है वो उस ऊँट को तभी रखेगा जब तक वो उसकी आजीविका में सहायक है, इसलिए इन दोनों में ये पूरा मूल रूप से पारिस्थितिक फर्क है।
तो भोमजी भाई देखो, वन्य जीव संरक्षण और ऊँटारे संरक्षण रो अंतर कई है आपने चौकी तरीके समझ में आए, और देखो भोमजी भाई इन बात रो तो खुलासा हो गया की ऊँटारो संरक्षण कई है क्यूँ है। तो एक बात अटक्योड़ी है मन रे मायने, और पावना है साथ है, तो अटकोड़ी राखण की जरूरत ही कोनी, पूछ ही लेऊं कि डॉक्टर साहब देखो समन्वित प्रयास तो इनसु आप रो कई अर्थ है, क्या समन्वित प्रयास कई हुए?
देखो साहब, एक आदमी कोई भी प्रयास करेगा तो वो सफल नहीं हो सकता, और काम कोई भी हो छोटा नहीं होता, काम और फिर संरक्षण का जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। और उसके लिए ऐसा नहीं है, कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे सरकारी विभाग हैं और आम जनता भी है। हम सब मिलकर अगर इस काम को करें, और इसमें से मैं कुछ कुछ मुख्य नाम लेना भी चाहूंगा कि जो लोग इससे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र लंबे समय से काम कर रहा है, उसके साथ साथ जो कृषि विश्वविद्यालय है या पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, पशुपालन विभाग है, आकाशवाणी है, मीडिया के अन्य साधन है, आम किसान है, आम मैकेनिक है, जो हमारा समाज है, हम सब मिलकर अगर प्रयास करें, हमारी एक सोच में इसको जगह दें और उसके लिए एक समन्वित प्रयास करें, सब मिलकर काम करें, तो ये काम बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं।
तो बूमजी भाई, समन्वित प्रयास रो अर्थ भी समझ में आएगी, संरक्षण री बात समझ में आएगी, समन्वित प्रयास री समझ में आएगी। अब न तो देखो हमारे मन में कोई अटकाव है, न भटकाव है, और पावना है साथ है,
बिल्कुल
है, तो हमें तो हमारी पखाल खुल खुल करनी वाजिब है के नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल,
तो गीत तो काढ़ना है, पर देखो पावना रे मनवारे सारू काढ़ू तो पावना रे मन रो गीत।
तो बिल्कुल सा, डॉक्टर साहब आप ही बताओ कि आप किसो गीत सुनना चाहो और हमारा जगह ऊंट पालक भाई भी है ना सुनाना चाहो आप।
नया दौर फिल्म का एक गाना है, साथी हाथ बढ़ाना।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना।
साथी हाथ बढ़ाना,
साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे,
साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे,
साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे।
हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें,
फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें,
हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें,
हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना,
साथी हाथ बढ़ाना।
तो साबार आप सुनिए डॉक्टर शरदचंद्र मेहतारी पसंद रो गीतर लो गवरा बेनी पखाल माशो।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन बेला आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी दिवन सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शरद चंद्र मेहता।
और देखो बोमजी भाई, आप गीत पहला बात करी ही के डॉक्टर साहब बताओ की समन्वित प्रयास केवे किन्न है, इनरो अर्थ कई है, पर इन मायने बताओ की राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र भी आपरा मोकड़ा प्रयास करे है, तो एक एक करोड़ सावर समझा डॉक्टर साहब कनु के ए प्रयास कई है और इन रो फायदो अपने ऊंट पालक ने कही है। तो डॉक्टर साहब देखो दूध उत्पादन की अगर आप बात करा, दूध री बात करा, तो इन सारू का एक प्रयास हो रहा है।
देखो गबरा बहन, दूध की बात हम इसलिए करते हैं कि जो ऊंट का पारंपरिक उपयोग था, उसके बाद राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ने कई अनुसंधान किए और इसकी उपयोगिता को सिद्ध किया। अब बात आती है कि इसको केंद्र से हमें गाँव में ले जाना है, जिस क्षेत्र में दूध का उपयोग हो रहा है उस क्षेत्र में वो दूध के लिए कैसे चयन कर रहे हैं किसी भी ऊंट को, वो अपने ज्ञान से, पारंपरिक ज्ञान से उसको ले रहे हैं। अब अगर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र और जितनी संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई है वो इसको बढ़ावा देना चाहती है, तो उसका मैं एक उदाहरण आपको रखूंगा कि उसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। हम अगर 4-5 जिले भी लेते हैं जहाँ ये दूध का व्यवसाय बड़े अच्छी मात्रा में होता है, जैसे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उस क्षेत्र में ये व्यवसाय होता है, और अगर हम उस क्षेत्र में दूध बढ़ाने की बात करते हैं, तो अगर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अकेला सोचे कि ये कार्य वो कर दे तो वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि एक अच्छा पशु आपको उसको देना है, नर पशु, नर पशु का चयन होना चाहिए, पहले गांव से भी चयन हो और आपके केंद्र पे जितने अच्छे ऊंट हैं उनकी दूध उत्पादन क्षमता भी देखी जाए और गांव वालों की भी देखी जाए, और उसको अच्छे प्रजनन करा कर अच्छा बच्चा पैदा करके आपको उनको देना होता है। लेकिन आपको पता है कि आपने अच्छे अनुवांशिक गुण किसी में डाल भी दिए लेकिन अगर खानपान अच्छा नहीं मिला तो वो दूध वहाँ अच्छा नहीं देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर चरागाह विकास की बात करनी पड़ेगी, फिर उनके पोषण की बात करनी पड़ेगी। आपने पोषण भी किया, चरागाह विकास भी किया, तो उसके बाद आपको रहेगा कि कोई बीमारी ना आए। कई बार महामारी आ जाती, कई तरह के रोग हो जाते हैं और उत्पादन पे फिर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। तो अब ये सारा काम करना है, आप एक उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में बैठ कर कहाँ कहाँ जा सकता है? बहुत सीमित संख्या में वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन हम अगर पशुपालन विभाग को इसमें हम साथ जोड़ते हैं और इसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, तो ये जो चीज़ वो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। उसी तरह जो चरागाह विकास की बात या खानपान की बात है, जैसे उदयपुर में विश्वविद्यालय है, बीकानेर में विश्वविद्यालय है, जोबनेर में विश्वविद्यालय है, कोटा में विश्वविद्यालय है, कई जगह विश्वविद्यालय है, और ये लोग अगर हमारा साथ देते हैं तो ये काम हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। एक अच्छा दूध है, स्वस्थ दूध है, फायदेमंद दूध है, कई गुणों से भरपूर दूध है, तो ये हर तरह से मानव के लिए भी, ऊँटों के संरक्षण के लिए भी, और इसको बढ़ावा हम देना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा और जैसा आज अपने कार्यक्रम की बात है कि समन्वित प्रयास नहीं होंगे तो ये काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जहाँ उस अनुसंधान केंद्र है इसके पास कई तकनीकें हैं, ये जितना अच्छा पशु छांट सकता है उतना दूसरे लोग नहीं छांट सकते, लेकिन जो बाकी संस्थाएं हैं वो आपको उस क्षेत्र में मदद कर सकती है।
और डॉक्टर साहब, दूध के अलावा और किसा प्रयास है जिसको की राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कर रहे है?
देखो, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र हर तरह से काम करता है, और जब से इसको राज्य पशु घोषित किया गया है उसमें जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता की हम बात करते हैं, तो ये भी ऊँटों में एक विशिष्ट गुण है। इसके अनुवांशिक गुणों की भी बहुत चर्चाएं होती है कि ये 40 डिग्री 50 डिग्री में भी रहता है, 4 डिग्री और 5 डिग्री में भी बड़ा आराम से काम कर लेता है, और वैज्ञानिकों ने अब तक जो शोध की है उससे पता चला है कि इसके जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इसमें जो हैवी चेन एंटीबॉडी है और उसका एक विशेष रूप है, उसका हम कई चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं, और वो कई बीमारियों के डायग्नोसिस में आदमियों में भी काम आ सकता है क्योंकि वो एक विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी। दूसरा जो चीज है कि हमने एक योजना बनाई, बहुत छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं हम, और हम ये सोचते हैं कि ये हम दो लोग या तीन लोग मिलकर इस कार्य को पूरा कर लेंगे, लेकिन आज जो रिसर्च का, आज जो अनुसंधान का लेवल है वो बहुत ऊंचा है, और ऐसी कई मशीनें जो करोड़ों अरबों रुपए की है, लेकिन जो अनुसंधान का स्तर है वो उसी स्तर का हो चुका है। और इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जो अफ्रीकी देश है उनमें आप देखिए कि उनके पास कई चीजें तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी नहीं है, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, जैसे जर्मनी के साथ कोलेबोरेशन किया, ऊँटों के लिए ही बता रहा हूँ मैं। और ऊँटों पे वो आधा काम अपने वहां करते हैं अफ्रीकी देशों में, जैसे सूडान हुआ, इथोपिया हुआ, वहां करते हैं, और बाकी की चीज लेके वो जर्मन वैज्ञानिकों के साथ मिल बैठ कर लेते हैं, और वो एक विश्व स्तरीय प्रकाशन आ जाता है। उसी तरह हम लोग भी अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, और उसको उन लोगों के साथ मिलके, अगर भारत में उपलब्ध है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ उपलब्ध नहीं है तो जहां भी उपलब्ध हो उनके साथ कार्य करके इसको विश्व स्तरीय शोध बनाना बहुत जरूरी है। और विश्व स्तरीय शोध अगर नहीं होगी तो उसके कई कई खामियां जमी हमें भुगतने पड़ते हैं। और इसका भी मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो हमारी NRCC ने पहले भी किया, अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि हम कई हर्बल मेडिसिन बनाते हैं, जड़ी बूटियों से हम कुछ कुछ प्रयोग करके, छोटे छोटे प्रयोग करके कुछ दवाएं बनाते हैं। अब वो दवाएं हमने कुछ 5 पशुओं पर, 10 पशुओं पर, 20 पशुओं पर टेस्ट की, कई हमने फील्ड ट्रायल भी किए, लेकिन दवा बनाने का एक पूरा सिस्टम होता है, पूरा प्रोसीजर होता है कि इसके बाद इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, कितने समय बाद इस जीवाणु में इसके प्रति प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाएगी, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमें विश्व स्तरीय सहयोग की भी जरूरत होती है। तो इस तरह जब हम ये काम करते हैं तो हमें अलग कुछ भी नहीं कर सकते, हम सब लोगों के साथ अगर मिलेंगे, भारत में अन्य जगह, विश्व में अन्य जगह, विश्वविद्यालयों में, कहीं भी, तो हमें वो सब मिल बैठ के काम करेंगे, तभी हम कुछ बहुत अच्छी और ठोस चीज हम दे पाएंगे।
और अब डॉक्टर साहब, मैं आप पूछना चाहूँ आपसे कि ऊँट ने दूध औषधि गुण बारे में थोड़ा बताओ।
ऊँटनी के दूध की औषधि गुणों की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है, उस वक्त भी जो हमारे यहाँ के स्थानीय मेडिसिन के प्रोफेसर्स हैं, जो हमारा यहाँ बीकानेर का मेडिकल कॉलेज है, उनके साथ हमने टीबी के लिए शोध किया, उनके साथ हमने डायबिटीज के लिए शोध किया और उन शोध के दम पर ही हम बहुत कुछ कह पाए। ये भी एक समन्वित प्रयास था। अब समय यह आ गया कि जो हम जिस तरह का रिसर्च कर रहे हैं वो उसको लोग सतही रिसर्च बोल देते हैं, क्योंकि रिसर्च का जो लेवल है, अनुसंधान का जो स्तर है, वो काफ़ी ऊंचा हो गया है। आज हमें बताना पड़ता है कि इस दूध में कौन सा तत्व था और उस तत्व ने कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए और कितनी मात्रा में ये इंसुलिन की ज़रूरत को कम करेगा, या ये टीबी में कितनी मात्रा में दिया जाए, क्या दिया जाए, किस कारण क्या होगा और उससे कितना फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें जब हम करना चाहते हैं तो समन्वित प्रयास हमने पहले भी किया है और इसको आगे ले जाने के लिए और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए इसको हमें और अच्छी एजेंसीज के साथ मिलकर के इसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है।
बस समन्वित प्रयास करा तो भी सफलता मिल सके अपने।
तो समझ में आई भोम जी भाई कि एक नहीं, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कई प्रयास कर रहे हैं जेंसू की अपना ऊँटा ने संरक्षण मिल सके। पर डॉक्टर साहब देखो, ए तो बात जी को आप बताई है कि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है, वैज्ञानिक है, आप विश्व रामायण मेलजोल रहा काम कर सका, पर मैं तो बात करूँ गाँव गाँव डाणी डाणी आम आदमी मेरी, वो आम ऊंट पालक रही, तो वे ऊंटसू आप कई उम्मीद करो कि वे ऊंटारा संरक्षण रे मायने कई प्रयास कर सके है।
देखो गौरा बेन, आज भी ऊंटों की जितनी संख्या बची है 4 लाख करीब देश में है और ये दूध की हम बात कर रहे हैं, दूध हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ऊँटों की जो मुख्य संख्या बची हुई है वो सामान के कारण, सामान लाने ले जाने के कारण या पानी लाने ले जाने के कारण या अन्य कार्यों के कारण, यानी कि बोझा ढोने के कारण है। और उसमें भी अगर हम देखते हैं कि हम कैसे लोगों के साथ मिलकर के, समाज के अन्य अंगों के साथ मिलकर के, जो धार्मिक ग्रुप हैं उनके साथ मिलकर के, पर्यटन विभाग है उनके साथ मिलकर के, या जो स्थानीय प्रशासन है उनके साथ मिलकर के, हम उसमें भी नयापन ला सकते हैं और उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। अब जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि हमारे यहाँ कई बार बात होती है कि कोई हेरिटेज रूट बन जाए, कुछ ऐसे जहाँ पर्यटन का विशेष महत्व हो उनको एक हेरिटेज रूट बनाकर जोड़ने की, टांगों से जोड़ने की भी बात होती है, तो उसमें हम ऊँटगाड़ों को भी शामिल कर सकते हैं। हम ऊँटगाड़ा बहुत अच्छा रथ की तरह डिजाइन भी कर सकते हैं, जिसमें एक आम मैकेनिक जो बीकानेर में उपलब्ध है वो उसमें सहयोग दे सकता है, और लोग बड़े विदेशों से आते हैं, देश से आते हैं, बड़े चाव से उसकी सवारी करते हैं, उसको थोड़ा सा हम अगर नयापन देंगे तो अगर वही पर्यटक दूसरी बार भी आया तो वो उसको करना चाहेगा। तो इसमें स्थानीय प्रशासन में मदद करे रूट बनाने में, कुछ मैकेनिक मदद करें उसको अच्छा डिजाइन कराने में, और पर्यटन विभाग मदद करे उनकी बुकिंग कराने में, एक सहयोग करे कि एक ग्रुप बन जाए, लोग साथ जुड़ जाएं और वो काम हो, उसी तरह जैसे बोझा ढोने का काम है। अब कई जगह मैंने देखा है कि बोझा ढोने में उनको बहुत भारी सामान नहीं ढोना होता है, तो जिन लोगों को भारी सामान नहीं ढोना है, सिंपल कोई 50 किलो 100 किलो इधर उधर चारा डालना है, रोज काम आता रहता है, उनको लकड़ी के बजाय अगर प्लास्टिक की जो फाइबर बॉडी हम बोलते हैं तो अगर उसका बनाएंगे तो उस गाड़े का वजन बहुत कम हो जाएगा, और वजन कम होगा तो ऊँट को चलने में बहुत सुविधा होगी। ऐसा एक प्रयास पहले भी हुआ है कि जिसमें ऊँटों के जो गाड़ी के टायर थे वो बड़े लगाए गए, कई जगह बहुत छोटे टायर थे, जब से बड़े लगाए गए तो इनकी संख्या में एकदम बढ़ोतरी हुई थी। तो उस तरह अगर हम छोटे छोटे प्रयोग करें, कहीं फाइबर बॉडी लगवा दें, कहीं रथ जैसा डिजाइन करवा दें, कई लोगों से मिलकर और भी काम करें। एक हमारे यहाँ हमने देखा, जालौर में भी मैंने देखा कि धार्मिक आयोजनों में ये बहुत काम आता है, बीकानेर में भी मैंने देखा कि पुनरासर मेले में लोग विशेष रूप से ऊँटगाड़ों का प्रयोग करते हैं, या उदरामसर में मेला लगता है उसमें भी ऊँटगाड़े का बहुत प्रयोग होता है, लेकिन हमने उसमें विशेष नयापन नहीं किया। कुछ समाज के लोग आगे आए और उन्होंने क्या किया कि बीच बीच में कुछ स्टॉल्स लगाने चालू किए, उस स्टॉल से लोगों की आम जरूरतें पूरी होती है, जैसे उनको खाना पीना मिल जाता है, ऊँटों के लिए अगर चारा मिल जाता है, हम उन चीज़ों में नयापन करें। टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमने जाते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, बीच में हम कहीं उनका हाल्ट करें तो वहाँ राजस्थानी गानों की व्यवस्था हो, उसके साथ साथ हमारा जो फायर डांस है यहाँ का, अग्नि नृत्य है, उसकी व्यवस्था हो, तो ये समन्वित प्रयास, कहीं आपके जो टेंट लगाने वाले होटल व्यवसायी हैं, कहीं आपके ऊँट पालक हैं और कहीं स्थानीय प्रशासन है, ये सब मिलकर इसको एक रूप दे, अच्छा रूप दे, तो उसमें नयापन भी होगा। नयापन हमेशा लोगों को लुभाता है और इससे इस चीज को बहुत आसानी से बढ़ावा मिल सकता है।
तो केवल री बात आई है कि इन प्रयासा रे मायने एक आम आदमी है, चाहे वो गांव गांव ढाणी ढाणी रो है, चाहे शहर रो है, चाहे कठे रो भी है, वो आप रो योगदान दे सके है। पर देखो, मारी पखाल भी एक योगदान तो दे ही सके है, वो इया है कि एवजे को पावना है नी यानी भूमजी भाई मने यहाँ लगे कि तीज त्योहार और याद आवे कि नहीं आवे मिले मगर यारी बात तो करी है तो पूछ ही ला देखो होली रो त्योहार आ रहे हो नेड़ो
बिल्कुल
तो एक पखाल मैं सु गीतड़ो काट रही ने पहली होली रो सुनवा ही दू
बिल्कुल सा आपसे सुनो सा गौरव बहनी पखाल मऊ होली रो एक फूटरो सो गीतड़
आई रे आई होली आई रे मारे इवड़े में बस जा थोड़ी सी मुड़क मारे इवड़े में बस जा माने प्यारी घणी लागे मारी गज बन गोरिए थोड़ी सी मुड़क जाए थोड़ी थोड़ी लुड़ जा मारे इवड़े में बस जा थोड़ी थोड़ी लुड़ जा मारे इवड़े में बस जा माने प्यारी घणी लागे मारी गज बन गोरिए थोड़ी सी मुड़क जाए बिठा दियो थारी नथड़ी में मोतीड़ा जड़ा दियो मारी गजबन पायलड़ी घड़ा दियो ये थोड़ी थोड़ी लुड़ जा मारे इवड़े में बस जा थोड़ी थोड़ी लुड़ जा मारे इवड़े में बस जा माने प्यारी घणी लागे मारी गजबन गोरी ये थोड़ी सी मुड़क जाए
आवार आप सुनियो होली रो रंग रंगीलो गीतड़ लो इन बेड़ा आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटा री बाता और आज चौपाल में जानकारी दिवन सारू पधारिया है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शरद चंद्र मेहता और आज आप बातचीत करिया ऊंटा रे संरक्षण सारू समन्वित प्रयास री आवश्यकता
बोमजी भाई
हाँ।
डॉक्टर साहब गीतड़ लो सुनता नहीं बुण भगत मैंने देखो टाबरिया कहीं एक बात कही के डॉक्टर साहब ने पूछो कि लाल कई दिन बाद चौपाल में आया है
हाँ।
तो गया कठे हा कोई नुवो काम करन गया हा कई
हाँ।
तो पूछ ही लेवा डॉक्टर साहब ने हाजी रह जाने
डॉक्टर साहब बताओ सा
देखो गबरा बहन और बोमजी भाई की पिछले कई समय से गांव में जाना बाकी था और इस बार मैं जब गांव में गया तो ऊंटारी बाता और लोगों के साथ उष्ट संरक्षण की कई सारी बातें करके आया। उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने किया वो नाथद्वारा के पास जावड़ की ढाणी गांव है उसमें हमने ऊंट पालकों की एक मीटिंग की और उसके साथ साथ वहाँ कम से कम 100-150 ऊँट इकट्ठे हुए उनका हमने इलाज भी किया और उनको हर तरह से हमारे से जोड़ने की बात की। उसके बाद मैंने एक विशेष प्रयास किया वो 1 तारीख को उदयपुर में जो पशु चिकित्सालय है पूरे क्षेत्र का पॉलीक्लिनिक जिसको बोलते हैं वहाँ पे मैंने जितने ऊँट के दूध के व्यवसाय करने वाले
हाँ।
उन सबको इकट्ठा किया था और एक हमने ऊँटों की प्रदर्शनी लगाई और ये वहाँ के पशुपालन विभाग के साथ हमारे डॉक्टर पोखरणा और डॉक्टर छंगाणी के साथ ये कार्यक्रम हमने किया। उसके बाद हमने 2 कार्यक्रम और किए उसमें जनजाति विकास का कार्यक्रम भी था और हमारा ऊंटानी बाता कार्यक्रम भी था। उसका पहला कार्यक्रम हमने किया था वली गांव है गिरवा तहसील में उदयपुर की और उस वली गांव में हमने बहुत बड़े शिविर और प्रदर्शनी का आयोजन किया और आपको आश्चर्य होगा कि उस शिविर में कम से कम 150 किलोमीटर तक के पशुपालक आए और ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। इसके बाद हमने एक कार्यक्रम किया प्रतापगढ़ जिले में, और प्रतापगढ़ जिले में धरियावत तहसील है और उसका श्रीगुड़ा गांव है। श्रीगुड़ा गांव बिल्कुल 100% एक आदिवासी गांव था। लोगों में उत्साह, पशुओं की भीड़, इतना कह सकते हैं कि सोचा नहीं हमने, हमारी अपनी सारी दवाइयां, उसके साथ पशुपालन की दवाइयां, टीकाकरण सारा काम हो गया, फिर भी पशु आते रहे। तो पशुपालन विभाग के साथ साथ जनप्रतिनिधि जुड़े, हम लोग जुड़े, एनजीओ जुड़ा, उन सबके कारण ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ, हम कह सकते हैं कि आशा से बहुत ज्यादा।
ओम जी भाई,
हाँ,
पूरो भरोसा हो, हाँ, और भी भरोसे माते खरा उतरिया
बिल्कुल,
कि अठे नहीं आया नहीं तो जरूर कीन की नुओ करता वेला,
हाँ,
क्योंकि असरंक्षण की बात है नहीं तो इन रमाने खाद पानी देना जरूरी वे,
हाँ, हाँ,
और एमिला मगरिया शिविर लगाना ये खाद पानी रो काम ही तो करे है, वो ही देवन गया है मेहता साहब।
और अब समन्वित प्रयास की बात करा तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कानीसू और किसा किसा प्रयास हो रहा है ऊंटारे संरक्षण सारू, वो हमारे पशुपालकन बताओ सा।
देखो, जो आज एक विशेष अवसर भी है कि हमारा जो ये ऊंटारी बाता कार्यक्रम है, ये एक वर्ष आज इसका आखिरी अंक है ये इस वर्ष का, और इसको भी हम अगर पूरे परिदृश्य में देखते हैं तो एक तरफ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, दूसरी तरफ आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के भी कई विशेषज्ञ इसमें आए, विश्वविद्यालय के कई विशेषज्ञ आए, पशुपालन विभाग के कई विशेषज्ञ आए, और आकाशवाणी की टीम ने इसको हर तरह से, जो आप कह रहे हो कि सिंचाई की, उसको खाद बीज और पानी दिया और उसको आगे बढ़ाया, उसको हमने बेहतरीन बनाने का एक प्रयास किया। इसके साथ साथ जो हमारे जितने पर्यवेक्षक गाँव में है उन्होंने इसके साथ साथ मीटिंग्स की, और इस अंक के साथ हम 100 से ऊपर मीटिंग कर लेंगे, और उन पर्यवेक्षकों के साथ जो वहाँ के स्थानीय पशुपालन के अधिकारी हैं वो लोग भी बहुत सहयोग देते हैं, नहीं तो ये काम संभव नहीं था। और ऊंटारी बाता कार्यक्रम में जो एक मकसद लेकर हम चले कि जन जन तक हम आवाज पहुंचाएं, हमने हर तरह से पशुपालन, आकाशवाणी, उष्ट अनुसंधान केंद्र, विशेषज्ञ सब मिलकर हमने ये काम किया। उसके साथ साथ समन्वित प्रयास में हमने टेक्नोलॉजी को भी समन्वित किया। तो इस तरह ये जो समन्वित प्रयास है कि आप समन्वित प्रयास करेंगे तो सफल होंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के साथ भी जुड़ा।
और गौराबेन, मैं आभार प्रकट करूं महाराज का भी, ऊंट पालक भाई है, वे पूरे एक साल से कार्यक्रम ने सुन दिया है और आगे भी वे कार्यक्रम से जुड़ियो रहे और माने कागज लिखता रहे।
और बोम जी भाई, देखो मैं तो एक अखाण हूँ समझाऊ समन्वित प्रयास या संरक्षण की बात के पांचारी लाठी एक रो बार, तो इन बात ने ध्यान रखनी है और कार्यक्रम ने सुनना है और माने कागज लिखना है। बोम जी भाई, एक काम तो थाने भी करना पड़ेगा, क्योंकि भार तो थाने कांदा माथे भी है ही है, ठिकानों कौन बताई।
बताऊं बताऊं सा, लिखो सा, ठिकानों लिखो, ऊंटारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर, और आज सा चौपाल में जानकारी देव सर पधारिया राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शरदचंद्र मेहता, और आज आप बातचीत करी ऊंटारे संरक्षण सारू समन्वित प्रयास री आवश्यकता। डॉक्टर साहब, आप चौपाल में पधारिया और माने इतिहासी चौकी ज्ञानवर्धक जानकारी दी, इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने करा राम राम सा।
राम राम सा।
तो सा आत ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति, संयोजक श्री अमित सिंह, प्रस्तुति श्री मिलिंद पांडे, प्रतिभागिता श्रीमती प्रभा थानवी और राम सहाय हर्ष।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊंटारी बाता आकाशवाणी बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।